تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا عَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اور اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ پھر بڑے پیار سے کہتے ہیں، یا بتنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتا دوں گا. یا بتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، اس لیے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. یہ تھی ایک معصوم ابراہیم کی آہوزاریاں. محبتوں بھرا دل ہے اور نفرتوں کے جواب میں محبت دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جن کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. کیوں؟ ایک تو وجہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ مکہ والے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑتے تھے. نام کی حد تک کہتے تھے کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے ہے اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے فالورز میں ہیں. لیکن حقیقت میں اب ان کا اس پیغام سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. وہ توحید پہ تھے، یہ مشرک تھے. وہ باپ دادا سے اللہ کے نام پہ جھگڑا مول لینے والے تھے اور یہ باپ دادا کی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کا ذکر لا کے ہم سب کو بھی اور اس دور کے لوگوں کو بھی لائحہ عمل سکھاتے ہیں کہ دیکھو، جب اپنے بیگانے بنتے ہیں، جب گھر میں مخالفت شروع ہوتی ہے، تو اس وقت تم نے اپنے رشتہ داروں کو کیسے سمجھانا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں. کتاب سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور سورت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورت مریم میں یہ ذکر آ رہا ہے نا. اور ذکر اذکرو وذکر کیا ہے؟ یاد کرنا، بھولی ہوئی بات کا یاد رکھنا. یعنی ان کو یہ باتیں بھول چکی ہیں، آپ ان کو سنا دیں. کس کا ذکر؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا. اور ابراہیم کون تھے؟ پیچھے کئی بار اس پہ بات ہو گئی. لبیک اللہم لبیک کے جو لیکچرز تھے، اس میں بھی ایک لیکچر تھا، ابراہیم الذی وفا. ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اس دور میں آنکھ کھلی جب چاروں طرف اندھیرے تھے، لیکن اللہ نے ان کی چمک کو ختم نہیں ہونے دیا. انہ کان صدیقا نبیا، یہ تو سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے، راست باز تھے اور نبی تھے. صدیق صدق سے ہے، سچائی. صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے. فعیل، بہت راست باز، جس کے قول اور فعل میں مطابقت ہو، اور سچائی جس کا شعار ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے جو درجے ہیں، اس میں سب سے اوپر کا درجہ نبوت کا ہے، لیکن امتیوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت کا درجہ ہوتا ہے. نبی اپنے دور کا سب سے بڑا صدیق ہوتا ہے. ہر نبی تو صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق ضروری نہیں کہ نبی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب ابو بکر صدیق کو دیا. اس امت میں آج وہ بہترین تھے کیونکہ مقام صدیقیت پہ پہنچ گئے. اس وقت اللہ کے نبی کی تصدیق کی جب لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی صدیقہ کہا گیا, پیچھے آپ پڑھ چکے, اور نبیین نبی تھے, نبأ اہم خبریں دینے والا. یہ دونوں صفات یہاں اکٹھی آئیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان صدیقیت کے مقام پر کب فائز ہوتا ہے, کیا چیزیں ہیں جو انسان کو صدیق بناتی ہیں؟ انسان کی سچائی, جس کے دل میں سچائی کی تڑپ ہوگی نا وہ صدیقیت کا درجہ پا لے گا. ہمارے یہاں عموماً صدیق, صادق, سچ بولنے کو کہتے ہیں, اور عموماً بس سچ بولنے والے کو کہتے ہیں یہ سچ ہے. دیکھیں وہ صادق تو ہو سکتا ہے, صدیق نہیں ہو سکتا. صدیق میں اصل میں تصدیق پائی جاتی ہے, کسی چیز کو ویریفائی کرنا. جب کوئی کسی چیز کو ڈینائی کرے اور اس وقت کسی کو ویریفائی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر بلائے گئے, اگلے دن خبر پھیل گئی. وہ لوگ جو پہلے ہی منتظر تھے کوئی بات ملنے کے, جب ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص تو اب رات کو کہاں سے ہو کے واپس آنے کا دعویٰ کر رہا ہے, تو چھ مگوئیاں ہونے لگیں. بات تو پکڑنے کو تیار ہی تھے, گھر گھر باتیں ہو رہی ہیں. دیکھو اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ وہ راتوں رات وہاں سے ہو کے بھی آ گئے. اتنے میں ایک شخص ابو بکر صدیق کو ملا, اور غالباً وہ ابو جہل ہی تھا. کہا کہ یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں رات کو یہاں سے نکلا, بیت المقدس میں گیا, پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا, اور پھر واپس بھی آ گیا, تو کیا یہ ممکن ہے؟ کہنے لگے ممکن تو نہیں ہے. کہا بس دیکھا یہ آپ کا دوست کہتا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے تو پھر یہ صحیح ہوگا. ابھی خود ان کو ملے ہوئے نہیں تھے, باہر ہی کہہ کے خبر دے دی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا یہ بات ہے, تو آپ نے کہا پھر آج سے ابو بکر صدیق ہے. اب یہ بات تو بڑی چھوٹی سی ہے, لیکن مخالفتوں کے جھنڈ میں صداقت کے لیے جم جانا, یہی صدیقیت ہے. عموماً انسان صدیق کیوں نہیں بن پاتا؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. اور جب انسان عمل سے تصدیق نہیں کرنا چاہتا, اگر آپ ایک جملہ یاد رکھیں تو انشاءاللہ صدیقیت کا معنی بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا. اور وہ کیا کہ دین پر عمل کرنے کا دوسرا نام تصدیق ہے. کہتے ہیں نا تصدیقم بالقلب, ایمان کی تین صفات, ایمان کے تین درجے یاد ہوں گے نا, اقرارم باللسان, زبان سے اقرار کرنا, و تصدیقم بالقلب, یہ وہی ہے صدیقیت, دل سے سچا کرنا. صرف زبان سے کہیں گے نا لا الہ الا اللہ اور دل تصدیق نہیں کر رہا, تو یہ نفاق بن جائے گا, کفر و نفاق ہوگا, اعتقادی منافقت ہو جائے گی کہ دل نہیں گواہی دے رہا. لیکن جب دل کی تصدیق ہوتی ہے تو زبان کا قول بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنتا ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, اللہ نے صرف ان کے ایک قول پہ ان کو جنتیں دے دی, کیونکہ وہ قول ان کی شخصیت کا غماز تھا. وہ باتوں کی بات نہیں تھی, دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والا احساس تھا کہ مما رفو من الحق, اور سچ کہنے میں اور سچ کر دکھانے میں ایک بہت بڑی حلیج ہوتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں جس کے لیے اکثر لوگ تیار نہیں ہوتے. جہاں سے اللہ کی مدد آنی ہوتی ہے نا, وہاں ہماری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور صدیقیت کے درجے پہ پہنچ نہیں پاتے. لوگوں کی موافقت لینے کے لیے, ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہم عملی تصدیق سے پیچھے رہتے ہیں. ہر دور میں یاد رکھیے گا, سچ بولنے کی ایک بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے, جو قیمت اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. اس قال علی ابی ہی یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, یہ ہے سچ. सारा मुआशरा शिर्क में डूबा हुआ है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की तस्दीक कर रहे हैं, रब का पैगाम डाल रहे हैं, रब की बात, रब का नाम लोगों के सामने ला रहे हैं। ए अब्बा जान लीमा, या अबती को पहले देख लें, मोहब्बत का अंदाज़ है। अरबी में बाप को अब कहते हैं या इब भी आता है कभी। बाप, तो ता किस चीज़ की है? ये प्यार की ता है। या अबती, ये ऐसे जैसे आप कहते हैं ना बच्चा, और फिर कभी प्यार से कहते हैं ये तो बच्चूंगड़ा है। तो अरबी में अक्सर इस अंदाज से बात की जाती है, या अबती, ओ अब्बा जी, यानी प्यार का अंदाज है, मोहब्बत वाली बात है। लिमा था बुदू माला यस्मो, क्यों आप इबादत करते हैं उनकी जो सुनते ही नहीं, वला युब सिरू, और जो देख ही नहीं पाते, वला युगनी अन कशैया, और आपकी कुछ मदद भी नहीं कर सकते। अंदाज देखिएगा, बराह रास हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह को एक मानो, पहले शऊर को झंझोड़ा। आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, जैसे प्यार से बच्चे लाड से माँ बाप से पूछ रहे होते ना, अच्छा अबू ऐसा क्यों होता है, अच्छा इसकी क्या वजह है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बाप से भोले बन के पूछ रहे हैं कि अब्बा जान आप ऐसा क्यों करते हैं, जो आपको फ़ायदा नहीं देते, आप का कुछ बिगाड़ते नहीं, बनाते नहीं। अब देखिए कि ला यस्मऊ पहली बात, ला युबसिरु दूसरी बात, और ला युगनी अन कशैया, इन तीनों चीज़ों को जमा करके देखें तो शिर्क की बड़ी बड़ी अकसाम जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। आज के दौर में अगर देखें तो शिर्क की दो बड़ी किस्में मशहूर हैं, एक है बुत परस्ती और दूसरी है पीर परस्ती। पीर चाहे ज़िंदा हो या फौतशुदा, ज़िंदा था तो कम से कम देख तो सकता था, सुन भी सकता था, कुछ वसाइल होने की वजह से मदद भी कर सकता था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम तो बुत परस्त थी, जो ना सुनते ना देखते ना हरकत करते, वो तो अपने वजूद तक के लिए इंसानों के मुख्ताज थे, तो दूसरों की मदद कहाँ से करेंगे। कैसे प्यारे अंदाज से झंझोड़ दिया, हाँ क्या हो गया आपको, ये तो आपकी बात सुन ही नहीं सकते, जो सुनेंगे नहीं वो मानेंगे कहाँ से। या बतीनी कज्जा अनी मिनल इल्मी, ए अब्बा जान बेशक मेरे पास इल्म आ गया है। अल इल्म, कौन सा इल्म होता है, इल्म वही जिसमें इंसानों की दुनियावी ज़िंदगी की पूरी हिदायत मौजूद होती हैं और आखरत में मुहासबे का तफसीली ज़िक्र भी होता है। अगर खाली इल्म आता ना तो नकिरा था दुनियावी इल्म, लेकिन अल इल्म क्या है, उखरवी इल्म, दुनिया में जीने का सही अंदाज बताना और आखरत के मुहासबे का डर पैदा होना, इसको कहते हैं अल इल्म। हमारे पास है ये, अपने आप को कभी ना छोड़ा करें, इख्तसाब हर लम्हे किया करें, क्या मेरे पास भी अल इल्म आ रहा है, क्या दुनियावी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल हिदायत मिल रही हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं दीन के बारे में, इस्लाम की सारी बातें खुल गई मेरे ऊपर, वाज़े हो गई, और क्या आखरत के मुहासबे का डर पैदा हो रहा है। या बतिन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम यातिक, जो आपके पास नहीं आया, क्या ये गुस्ताखी है, आपके उस इल्म नहीं आया मेरे पास आ गया, नहीं। देखिए इल्म के लिए उम्र की कैद नहीं, और ये सोच लेना कि बच्चे को माँ बाप से ज़्यादा इल्म आ नहीं सकता, ये भी ज़्यादती है, बल्कि अगर आप ये जुमला लिख लेना, हर बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा ज़हीन होता है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है रहनुमाई अच्छी कर दी जाए तो वो दीन में भी अच्छे होंगे, लेकिन दुनियावी तौर पर आप देख लें, कितनी दफ़ा दिन में आप अपने बच्चों के हाथों खामोश हो जाते हैं, ऐसा उचटता हुआ जवाब आपसे मांगेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह आज उनके पास कंप्यूटर्स हैं, उनके पास गेम्स हैं, उनके पढ़ने लिखने के वो स्टाइल्स हैं जो पहले दौर में नहीं थे। आप उनको विजुअल एड देते हैं सिखाने के लिए, आज का 4-5 साल का बच्चा जो है वो आज से 15-20 साल पीछे के शायद 10 साल के बच्चे से भी ज़्यादा ज़हीन है, ये फैक्ट है, और यही फैक्ट दुनिया को आगे बढ़ाता है। अगर आने वाली नस्लें पहलों से शार्प और अच्छी ना होंगी तो आने वाले दौर के तकाजे कैसे पूरे करेंगी? बुद्धू रह जाएंगे। यानी आप सोचें, अगर हमारे घरों में बुद्धू पैदा होने लगे तो हमारी नस्लों का क्या होगा? मिट जाएगी चंद सालों में, माँ बाप का नाम डूब जाएगा। इसलिए एक फैक्ट हर एक को कबूल करना है कि मेरे बाद आने वाले मुझसे समझदार होंगे, मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा ज़हीन होंगे। हाँ, ये माँ की ज़िम्मेदारी है कि उनकी ज़हानत को किधर लगाती है, ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने शागिर्दों की उन स्किल्स को कैसे अच्छे रंग में मुड़वा ले, कैसे उनको मोटिवेट कर ले। लेकिन इस चीज़ को कभी भी वजह नहीं बनानी अन्ना की कि मेरा बच्चा मेरे आगे बोल रहा है। हाँ बोलेगा, ठीक है, आप उसको अच्छा अदब सिखाएं, अच्छी तरह बात करें। और बाज़ दफ़ा आप देखिए कि बच्चों के पास इल्म माँ बाप से पहले आ जाता है। वो मसरूफियात में रहे, उनको मौका नहीं मिला, बच्चों को बचपन से एक अच्छी तरबियत मिल गई, दीन का माहौल मिल गया, लिहाजा मेरे पास वो इल्म आ गया जो आपके पास नहीं था। लिहाजा फत्तबेनी अहदिका सिरातन सवीया, बस मेरी इत्तबा कीजिए, मेरे पीछे चलिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। इत्तबा तबिया से ताबा आइन, तबिया कहते हैं किसी के फुट स्टेप पे चलना। तबिया कहते हैं गाय के बछड़े को, पैदा होते ही उठ के खड़ा होके माँ के पीछे चलने लगता है, तो इसलिए उसको तबिया कहते हैं। इसी से लफ्ज़ इत्तबाए सुन्नत है, किसी के फुट स्टेप पे चलना। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी को आप देख रहे हैं तो आप भी चलते जाएं। हमारे यहाँ इसको उर्दू में कहते हैं किसी के नक्शे पा पे चलना, नक्शे कदम पे चलना। एक होता है लफ्ज़ इतात, तौअन से, दिल की खुशी से चलना, उसमें ऑर्डर ज़रूरी होता है। किसी ने आपको कहा आ जाओ तो आप कहते हैं हाँ हाँ मैं खुशी से आ रही हूँ। लेकिन इत्तबा में कोई इंस्ट्रक्शन ना भी मिले, मोहब्बत के मारे इंसान उसके पीछे लग जाता है, कहा मेरे पीछे लगिए, अहदिका मैं दिखाऊंगा आपको। अहदिका का लफ्ज़ हा दाल या से है, वही लफ्ज़ जो इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम में था। मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता सवीया, सवीया का लफ्ज़ सीन वा और या से है। सवीया हमवार, बेनक्स, बेऐब और दुरुस्त चीज़ को कहते हैं। क्या आप मेरे पीछे पूरे शऊर से चलिए, मैं इंशाल्लाह आपको मिसलीड नहीं करूँगा। मेरे पास जो इल्म है, जो अल्लाह की मार्फत है, जो रब का यकीन है मेरे पास, जो मरने के बाद की बातें मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं आपको भी बताऊँगा। कोई बुरी बात नहीं कि अगर मैं आपको अच्छी बात बता दूँ तो, कोई हर्ज की बात नहीं, मेरे पीछे तो चलिए। लेकिन या बतिला ताबुद शैतान, या अब्बा जान शैतान के पीछे ना चलिएगा, उसकी इबादत ना कीजिएगा। कितना प्यारा अंदाज़ है ना, कि मेरे पीछे चलें लेकिन शैतान के पीछे ना चलें। शैतान के पीछे चलना क्या होता है? या ताबुद शैतान, क्या कोई शैतान की इबादत करता था, पूजा करता था? नहीं, शैतान की इताअत करना दरअसल उसकी इबादत करना है, उसके वसवसों के पीछे लग जाना, उसके बहकावों पे चलना। कुरान पाक में दो तीन जगह ये आता है कि ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो। क्या मतलब? उसके नक्शे कदम पे ना चलो, वो आपको बुतों की परस्तिश करने के वसवसे डालेगा, वो आपको इन बुतों के सामने बैठने पे मजबूर करेगा, लेकिन आप इसके पीछे ना लगिए। इसलिए कि इन शैतान कान लिर्रहमानी असिया, शैतान तो रहमान का बड़ा नाफरमान है। असिया आसी से है, आइन स्वाद या, बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने वाला। आसी से सिफ्त मुशब्बा है, ये बहुत नाफरमान। अब देखिए कि मारूफ मानों में बाप शैतान का पुजारी नहीं था, लेकिन बुतों की पूजा को असल में शैतान की पूजा कहा, और होता भी ऐसे ही है। बंदा जिसकी इताअत करता है ना, उसका बंदा बन जाता है। इससे पता क्या चलता है? कि इताअत उसकी की जाए जो खुद अल्लाह का फरमाबरदार हो, और नाफरमानों की बात मानने वाला खुद भी नाफरमान हो जाएगा। और कितने प्यार से बार बार कह रहे हैं या बाती, ये ऐसे ही जैसे आप बात करते हैं अब्बू जी, अच्छा ये कर अब्बू, फिर थोड़ी देर फिर अब्बू, ये मोहब्बत के अंदाज़ होते हैं ना, या कोई माँ के साथ ऐसी बातें करे। कहा वो अल्लाह का ना फरमान है, और इशारा कर दिया कि अगर आप उसके पीछे लगे तो क्या होगा। या बतीन्नी अखाफ या मस्सा का अजाबु मिनर रहमान, ए अब्बा जान मुझे ख़तरा है कि अल्लाह ताला से आपको सज़ा मिलेगी। फतकून अली शैतानी वलीजा, और आप शैतान के साथी बन जाएंगे। एक मोहब्बत भरी औलाद अपने माँ बाप की हिदायत के लिए फ़िक्रमंद है, उसको गम है कि कहीं मेरे माँ बाप को सज़ा न मिल जाए, मेरे माँ बाप अल्लाह के अजाबों का शिकार न बन जाए। कितनी तड़प है हमें अपने माँ बाप के लिए, कितना गम है हमें अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए। आपको छू ना जाए, अगर आज आपका साथ छोड़ दिया मैंने तो कल आप भी शैतान के पीछे लग जाएंगे। सूरह नहल आयत 63 में भी आता है, तल्लाहि लक़द अरसलना इला उमम मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुम अश्शैतानु आमालहुम फ़हुवा वलीयुहुमुल यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम। शैतान हर दौर में हम लोगों को खूबसूरत करके दिखाता है। कहा भजन मैं आपको अल्लाह के अजाबों का शिकार होता नहीं देख सकता। अब बाप जवाब क्या देता है ज़रा देखिएगा, बेटे के अंदाज़ में दर्दमंदी है, और यही दर्दमंदी मतलूब है एक सच्चे दाई दीन से। वो देखेगा कि मैंने किस अंदाज़ में लोगों को बताना है, किस अंदाज़ में बुलाना है। ठीक है बात सच कह रहे हैं, लेकिन अंदाज़ अदब वाला है, मोहब्बत वाला है। अब बाप का जवाब सुनिए और देखिए कि कुफर कैसे दिल को सख्त कर देता है। काल अरागिबुन अन आलिहती या इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता हो गया है, क्या बेरग़बत हो गया तू मेरे इलाहों से ऐ इब्राहिम। ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नक, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे रजम कर दूंगा। वाहजुरनी मलिया, या फिर तू एक तवील मुद्दत के लिए मेरी आंखों से दूर हो जा। बाप का जवाब कितना स्ट्रेट है, मेरी आंखों से दूर चला जा। कहते हैं कि इनका बाप आज़र था, बादशाह के दरबार में रहता था, आला ओहदे पे फ़ायज़ था, बुत तराश और बुत फरोश था। बेटे की इस दावत का असर उसकी कमाई पे पड़ता, कैसे बेटे के कहने पे अपने रिस्क पर लात मारता, कैसे इस मनसब और जाहो जलाल को छोड़ता। यही दो रुकावटें होती हैं ना, माली कमी हो जाएगी और साथ ही साथ ओहदा रैंक स्टेटस कम हो जाएगा। बेटे की बातें समझ ना आई, कहने लगता है तुम तो अपने बाप दादा के दीन से पीछे हो गए हो, तुम तो गुमराह हो गए हो, तुम्हारा तो अकीदा ही ख़राब हो गया, मुझे ऐसी बेदीन औलाद की ज़रूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से, ना गए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, पत्थर मारूंगा, बेहतर है खुद ही चले जाओ। वाह जुर्नी, छोड़ दो मुझको, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कब कैसे कहाँ चले जाओ, मलेशिया। एक लंबी मुद्दत तक, मीम लाम वाव से ये लफ्ज़ है, मल व तुन से लंबे अरसे को कहते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड। इसी से ना अमली लहुम, मैं इनको मोहलत दे रहा हूँ, नुमली वो भी लफ्ज़ इसी से है, ज़माने दराज मोहलत देना। अब ये रजम करने की जो बात थी ये कौन सी थी, दोनों तरह से, यानी हिसी तौर पे भी पत्थर मारूंगा, मुराद ये कि पिटाई करूंगा, मारपीट करूंगा, और अल्फाज और तानों से भी पत्थर मारूंगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्फाज असली पत्थरों से भी ज़्यादा शदीद होते हैं, असर रूह पर आता है, चोटें लगती हैं रूह पर। बाप को कह रहे थे या बती, लेकिन बाप या बुनैया नहीं कह रहा, नाम ले रहा है। इसी से उसके दिल का ग्रज और उसका गुस्सा नज़र आता है कि बेटे पे कितना गुस्सा है। बाज आ जाओ, छोड़ दो, ऐसा क्यों होता है। असल बात यह कि एक झूठ को सुनते सुनते इतनी आदत हो जाती है कि वो सच लगने लगता है। आज भी जो लोग अपनी गलत आदत और गलत इबादत पे कायम है, आपका क्या ख्याल है वो गलत समझते हैं अपने आप को? नहीं, वो हक समझते हैं। आप पूछ लें, किसी को जाके पूछ लें, कितने तपाक से लोग अपने इदारों में, अपने मंदिरों में, अपने कलीसाओं में इबादत करते हैं। कैसे? इसलिए कि वो उसके आदी हो गए। गलत चीज़ बार बार सुनने से ठीक लगती है, इसीलिए फरमाया कि तुम इस चीज़ से अपने आप को दूर कर लो। क्या समझते हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा? हरगिज़ नहीं। छोड़ दो मुझको, वह चुरनी मलिया। इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब शायद ही किसी ने किसी को दिया हो। और सामने देखिए मासूम बच्चा है, मासूम बच्चा है इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, बाप से छिड़कें खा रहा है, डांट खा रहा है। आज हम इब्राहिम का नाम लेते हैं तो कैसा आइडियल शख्स ज़हन में आता है ना, वाह इतना अच्छा था, इतना कुछ था उनके पास। लेकिन आप ज़रा उनके दौर में जाके उनको देखिए तो डांट खाते हुए दिख रहे हैं, कहीं आग में गिराए जा रहे हैं, कहीं चोटें खाई जा रही हैं, कहीं पत्थर मारने की बातें। यही तौहीद की शान है। और मक्का वाले आज जो उनसे नस्बत जोड़ रहे थे उनके अकायद को बिल्कुल छोड़ चुके थे। बाप की ये कड़वी कुसैली बातें सुन के अब आगे देखिए अंदाज के अख्तियार करते हैं, जो असल में एक सच्चे दीनदार का अंदाज होता है और होना चाहिए। क्या? قال السلام عليك, तुझ पे सलामती हो। कोई गाली नहीं, कोई क्लोच नहीं, सलाम कर दी, तुम सलामत रहो। سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا, मैं करीब आपके लिए रब से बख्शिश की दुआ करूँगा और मेरा रब बड़ा ही मेहरबान है मुझ पर। ये है यदराउन बिस्सैयतिल हसना, बुराई के जवाब में भलाई करना। यही दीन का मिजाज है। दीन पनप नहीं सकता जब तक इंसान पत्थरों के जवाब में फूल ना फेंके और गालियों के जवाब में दुआएं ना दे। सच्चा दीन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये भी जवाब में पत्थर फेंकते तो फ़र्क क्या रह जाता? अल्लाह के नबी पे कूड़ा फेंकती थी एक औरत और आप उसकी तीमारदारी के लिए जाते थे। और देखिए क्या कहते हैं, सलामुन अलैक, तुझ पे सलामती हो। किस चीज़ से सलामती की दुआएं दे रहे हैं? शैतान के शर से बच जाओ। ऊपर कहा ना, फतकून अल शैतानी वलिया, शैतान तो बस तेरा दोस्त ना बन जाए, गम ये है। और आप कह रहे हैं मैं सलामती की बात करता हूँ कि तुम सलामत रहो। ये सलाम तहिया नहीं है, तहिया क्या कहते हैं, मुलाकात का सलाम, बल्कि ये तर्क मुहातबत का सलाम है। मुहातबत के कि हम आपसे ख़िताब नहीं करना चाहते। सूरह फुरकान 863 में आप पढ़ेंगे, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनसे ख़िताब करते हैं ना तो ये उनको कहते हैं सलाम। हदीस में ना कि जाहिलों से बहस ना करो, बस सलाम करके वहाँ से उठ जाओ। एक सलाम आप करते हैं किसी जगह जाते हुए, जाते हैं तो मिलते हैं अस्सलामुअलैकुम, और एक सलाम आप करते हैं किसी जगह को छोड़ते हुए, तो यहाँ छोड़ने वाली सलाम है। मुराद क्या है? बहस में नहीं पड़े, उलझे नहीं। कितने दलाइल दे सकते थे? अगर आप सिर्फ़ एक बाप के जुमले को देखें तो कितने दलाइल इसमें मिलते हैं कि जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पॉइंट आउट कर सकते थे, लेकिन नहीं, छोड़ो। सलामुन अलैक, मैं तो आपके लिए सलामती की दुआ करता हूँ, बल्कि सअस्तग़फिरुलक रब्बी, मैं आपकी बख्शिश की दुआ करूँगा। ये है वो वादा जिसकी बुनियाद पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआ की थी। कुरान पाक में आप पढ़ चुके हैं ना कि जहाँ भी वो बाप की बख्शिश की दुआ होती थी तो कहते थे मैंने अपने बाप से वादा कर लिया। ये नोट कर लीजिए हवाला, यहाँ है वो बात कुरान पाक में। इसीलिए फिर आपने दुआ की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर बाद में उनको मना कर दिया था। माफ़ी मांगूंगा आपके लिए। किस बात की माफ़ी मांगना चाहते थे? एक तो उनके शिर्क के गुनाह की, तौहीद को छोड़ के शिर्क पे आ गए, और दूसरा बेटे की नाकदरी की। देखिए कि जैसे माँ बाप के हकूक़ हैं ना, इसी तरह औलाद के भी हकूक़ हैं। माँ बाप के साथ कोई बदतमीज़ी करता है या उनकी नाकदरी करता है तो उसके ऊपर तो वईद है ही, आखिरत नहीं दुनिया में ही अल्लाह दिखाता है। लेकिन मासूम औलाद होती है, अगर उसके भी हकूक़ कोई नहीं देता ना तो फिर यही बात होगी। तो ज़रूरत है इस बात की कि यहाँ देखा जाए कि वो इस्तग़फ़ार किस बात की करते हैं। और वैसे भी कोई इंसान कोई भी गुनाह ना करे तो इस्तिग़फ़ार बंदे के किस चीज़ का कुफ़ारा हो जाती है? हदीस में आता है मल लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया अल्लाह उसको हर गम से निजात देगा और उसको हर हम से निकालेगा और उसको वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। तो ये बाप के लिए दुआओं की बात करते हैं। और ये जो हफ़ीया का लफ्ज़ है ना, अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से पेश करें। ठीक है, बाप में कोई ख़ूबी नहीं दिख रही, लेकिन अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ पेश करते हैं। ये बहुत प्यारा नुक्ता है। आपका अपना ताल्लुक़ रब से क्या है, ये डिफ़ाइन करेगा इस हकीकत को कि आप रब से क्या मनवाते हैं। बाप मुशरिक था, लेकिन अल्लाह ताला मैं तो तेरा बंदा हूँ। और इसीलिए हदीस में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुसवा नहीं करेगा। दुनिया में उनको मना कर दिया गया था दुआ करने के लिए, कल क़यामत के दिन इनके बाप की शक्ल बदल दी जाएगी और एक बिज्जू की सूरत में वो जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शर्मिंदगी ना हो, उनकी रसवाई ना हो। तो इसी बात का यहाँ ज़िक्र है कि इन्नहु काना बी खफिया, वो बड़ा मेहरबान है मुझसे, मोहब्बत करने वाला है, हमदर्दी, दर्दमंदी, नरमी, क्या कुछ दिख रहा है यहाँ से। और हर मुबल्लिग़ के लिए ये लाजमी है। नफ़रतें नफ़रतों को जन्म देती हैं, दिल मोहब्बतों से जीते जाते हैं। अल्लाह के नबी ने ताइफ़ वालों के साथ क्या किया था? उन्होंने पत्थर मारे, जूतियों में खून और चिपक गया, और आप दुआएं दे रहे हैं। क्योंकि जो इंसान बामकसद होते हैं ना, वो अल्लाह की खातिर पत्थरों जैसी बातें सुनकर भी सह लेता है। जैसे आप देखिए, कोई कोई भिखारी होता है ना, बेगर्स होते हैं, हर वक्त उनको डांट डिपट पड़ती है, खा लेते हैं फिर खड़े रहते हैं। क्यों? उनका मकसद ही है कि चलो कोई डांटेगा तो कुछ दे भी तो देगा ना, क्योंकि अगर आगे से वो गुस्से में आएंगे तो उनको भीख कौन देगा। तो चंद सिक्के पाने के लिए, चंद छोटी सी दुनिया की चीज़ें पाने के लिए लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जिसको जन्नत पानी है, फिर उसका क्या मिजाज होना चाहिए, उसका क्या अंदाज़ होना चाहिए? दुनिया में आप देखिए, मार्केटिंग जहाँ होती है बिज़नेस की टर्म्स में, तो आप जाके दुकान पे 10 बातें कहते रहें सेल्समैन को, वो मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर गुस्से में आके उसने एक बात कह दी तो उसके स्टोर का नाम ख़राब होगा। सह जाते हैं ना। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह जब जन्नत देना चाहता है तो उसको पाने के लिए भी वो खामोश रहे, तो क्या बड़ी बात है। और ये जो लफ्ज़ है ना खफ़िया, खा फा वाव से, हफ़ी कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलाशी हो, बहुत मेहरबान है, यानी बहुत कंसर्न्ड है मेरे साथ रब, रब को मेरी बात की बड़ी कदर है। वा तज़िलुकुम व मा तदून मिन दूनिल्लाही वअदउ रब्बी असा अल्ला अकूना बिदुआए रब्बी शकिया। मैं आप लोगों को भी छोड़े जा रहा हूँ और उनको भी जिन्हें तुम लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हो, और मैं तो अपने परवरदिगार ही को पुकारूँगा। यानी अब दिल खट्टा हो गया, बस नसीहत करनी थी कर दी, हक अदा करना था कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। क्योंकि अब देख लिया कि यहाँ कोई बचने की सूरत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं, तो कहा मैं जा रहा हूँ और रब से मांग के मैं कभी महरूम नहीं रहा। सूरह शुरा आयत 86 में भी आता है वग़फ़िर ली अबी इन्नहु काना मिनल ग़ावीन, ए अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, वो गुमराहों में से है। फिर इस तरह रब्बिग़फ़िर ली वली वालिदैया वली मन दख़ल बैतिया। अब देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल तो नहीं हुई बाप के लिए, लेकिन हम सब की दुआ का हिस्सा बन गई। हमें बता दिया कि तुम अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो। सूरह तौबा 114 में आता है कि मुशरिकीन के लिए दुआ नहीं कर सकते, इसीलिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चल गई ये बात, तो फिर उसके बाद आपने दुआ ना की। लेकिन ये जहन में रखिए कि जिंदा मुशरिकों के लिए दुआ की जा सकती है। अगर किसी के माँ बाप मुशरिक हैं, शिर्क पे हैं, तो वो उनकी हिदायत की दुआ कर सकते हैं। और अहले ताइफ की मिसाल मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने उनकी हिदायत की दुआ की थी कि अल्लाह ताला ये ہدایت پہ قائم رہیں اور پھر اپنے رب کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، میں کبھی بدبخت نہیں رہا، یہ کون سا یقین ہے؟ یہ توحید کے بعد پیدا ہوتا ہے، جتنی توحید پختہ ہوتی ہے نا اتنا آپ رب کائنات کو دیکھا کرتے ہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ فلمّا تزلہم وما یعبدون من دون اللہ، جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اوپر کہہ رہے ہیں آتزلکم اور یہاں کیا کیا ہے، آتزلہم چھوڑ دیا، جب ان کو چھوڑا اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، پھر ہم نے اسحاق اور یعقوب دیے بیٹا اور پوتا، وکلاً جعلنا نبیّا، اور سب کو ہم نے نبی بنا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب چھٹتا ہے کچھ پھر مدد آتی ہے، اللہ نے پھر مدد دے دی۔ اللہ کے راستے میں جب تک ہم کوئی قربانی نہیں دیتے نا تو خوشخبریاں نہیں پاتے، وہ خوشخبریاں چاہے اطمینان قلب کی ہوں یا دنیا کی کسی دولت کی ہوں یا آخرت کی کوئی بات ہو، کچھ چھٹا تو رب نے دیا۔ اس سے ایک بات بھی پتہ چلی کہ ماں باپ سے صلہ رحمی کی تو اللہ نے اولاد عطا کی، نیک اولاد ملتی ہے۔ وَحَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے بچوں کو بھی نبی بنایا اور ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا اور ذکر خیر سے سر بلند کیا تھا۔ اللہ اکبر، ان کی نسلوں میں نام رہا، ہجرت کے بعد اولاد ملی، یہ بات سمجھ آ جائے نا تو زندگیوں کے رخ بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں گھر کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، باپ سے بات کی، اللہ نے چھٹے ہوئے رشتہ داروں سے بہتر دے دیے، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پھر یعقوب آئے، اور یعقوب کی نسل سے 12 بیٹے آئے، اور اسی سے بنی اسرائیل سینکڑوں نبیوں کی قوم بن گئی۔ اور یہ جو لسان صدقین ہے نا لیا، یہ تمام مذاہب میں آپ کی یکساں مقبولیت کی دلیل ہے۔ ہر مذہب اور ہر ملت والے آپ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے وصف بیان کرتے ہیں، اور ان سے اپنے مذہب کا رشتہ جوڑتے ہیں، انہیں ذکر خیر سے یاد کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں ہم اپنی نمازوں میں کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، پھر کیا کہتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، یہ ہے اصل میں حضرت ابراہیم کی دعا، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ تو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنی دفعہ ان کا ذکر پڑھیں دل کھل جاتا ہے ہدایت کے لیے اور اللہ کی بات کو سن کے قبول کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات بس ان کے بارے میں، جو شروع میں تھی کہ وہ صدیق نبیین تھے، سچے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ قول کے سچے تھے، عملی زندگی میں سچے تھے، تو پھر صحیح بخاری کی اس روایت کا کیا کہنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہ بولا سوائے 3 مرتبہ کے، 2 مرتبہ تو اللہ کے واسطے ان کا یہ کہنا کہ انی سقیم، اور یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، سورۃ انبیاء میں آپ پڑھیں گے آیت 63 میں، یہ دونوں اللہ کے لیے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن وہ اور ان کی بیوی سارا اس حال میں جا رہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ پر ان کا گزر ہوا، کسی نے بادشاہ سے کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی بھی ہے، اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور سارا کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ میری بہن ہے، پھر وہ سارا کے پاس گیا اور کہا اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، اس ظالم نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میری دینی بہن ہے، بس تم مجھے جھوٹا نہ کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء کی روایت ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ یہ جو 3 جھوٹ تھے، بظاہر جھوٹ بھی تھے اور توریہ کی بھی ایک قسم تھے، تو اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کے صدیق ہونے کی بڑی شہادت ہے۔ اگر کوئی 175 ایئرز میں 3 مرتبہ اگر جھوٹ بول دیتا ہے اور وہ بھی ایسے جھوٹ نہیں، تو اس سے پھر صدیقیت کے مقام سے وہ نہیں گرتا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں بھی سچ کا عادی کر دے.